इथा योनि निभूतानि सर्वानित्युपाधारया अहम् कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयास्तथा. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution.
इस दुनिया में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है, ये जान लो मैं ही उसका स्रोत हूँ और अंत में मैं ही उसके नाश का कारण हूँ.
Report by Srila Prabhupada. Everything that exists is a product of matter and spirit.
जो भी चीज उत्पत्ति होती है वो भौतिक तत्व और आत्मा से बना है.
Spirit is the basic field of creation, and matter is created by spirit.
आध्यात्मिक जो है वो भौतिक चीज की रचना करता है.
Spirit is not created at a certain stage of material development.
और भौतिक विकास की किसी अवस्था में आत्मा का निर्माण नहीं होता.
Rather, this material world is manifested only on the basis of spiritual energy.
ये भौतिक प्रकृति जो है आध्यात्मिक शक्ति से ही प्रकट होती है.
This material body is developed because spirit is present within matter.
ये भौतिक शरीर का विकास तब होता है जब शरीर के अंदर आत्मा होती है.
A child grows gradually to boyhood and then to manhood because that superior energy, spirit soul, is present.
एक बच्चा जो है नौजवान और धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है क्योंकि उसके शरीर में आत्मा है.
Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the super soul.
उसी तरह से ये पूरी जो भौतिक जगत है वो भी विष्णु परमात्मा के रूप में होने से ही उसका विकास होता है.
We are reading this evening from the Bhagavad Gita chapter number 7.
आज हम गीता के सातवें अध्याय से पढ़ रहे हैं.
Which is entitled Knowledge of the Absolute.
इसका शीर्षक है कि परम तत्व का ज्ञान.
Krishna explains to Arjuna that there are essentially three energies.
भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तीन प्रकार की शक्तियां हैं.
There is the spiritual energy.
एक आध्यात्मिक शक्ति.
Where everything is eternal.
जहां सब कुछ शाश्वत होता है.
Everything is beyond all suffering.
और सब दुखों से परे होता है.
सच्चित आनंद, full of knowledge and full of bliss.
वो सच्चित आनंद है, नित्य और हमेशा ज्ञान और आनंद से पूर्ण है.
And there is also the material energy.
और एक भौतिक शक्ति भी है.
माया शक्ति.
इसको माया शक्ति कहते हैं.
Where everything is essentially temporary, full of ignorance, and subject to suffering.
और वहाँ पर सब कुछ जो है कुछ समय के लिए है, अज्ञान से पूर्ण है और दुख से भरा हुआ है.
And Krishna explains very scientifically how this material energy manifests creation and what are the basic elements within this creation.
भगवान बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कैसे ये भौतिक प्रकृति के तत्व प्रकट होते हैं और वो कौन कौन से तत्व हैं.
भूमि रपो नलो वायु काम नो बुध रेव अहंकार इतिहा भीना प्रकृति रष्टता. अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड द फॉल्स ईगो आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन.
इस भौतिक सृष्टि के जो है तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि एवं अहंकार.
एंड देयर इज अ थर्ड एनर्जी अपरे अमितस्वान्याम प्रकृतिम ब्रह्मा. जीव भूत महाबहो येदम धारयते जगत। दिस इज द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इन इट्स फीचर ऑफ द जीवात्मा और द स्पिरिट सोल।
और तीसरी शक्ति है जीवात्मा, जो कि आत्मा कही जाती है।
The jiva atma is part and parcel of Krishna.
वह जीवात्मा भगवान का एक अंश है।
Of the same spiritual essence as Krishna.
जो कृष्ण का आध्यात्मिक सार है वही जीवात्मा में पाया जाता है।
When we speak of Krishna, we speak of Param Brahman or Bhagavan.
जब हम कृष्ण कहते हैं उसका अर्थ परम ब्रह्म या भगवान होता है।
The absolute truth.
जो कि परम सत्य है।
The cause of all causes.
सब कारणों के कारण है।
But the jivatma is infinitesimally small.
लेकिन जीवात्मा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्षुद्र साइज का है।
And is eternally subordinate to Krishna.
वो हमेशा कृष्ण के अधीन रहता है।
And the jivatma, due to its minute independence, has the choice to either serve under Krishna through his spiritual energy or material energy.
और जीव के पास जो है ये चयन करने का अवसर है कृष्ण के अधीन कार्य करे भौतिक शक्ति के अंदर या आध्यात्मिक शक्ति के अंदर।
When we serve under the spiritual energy, we engage forever in the ever blissful pastimes of the Lord in the planets called Vaikuntha.
जब हम आध्यात्मिक शक्ति के अधीन होते हैं तो हम भगवान के नित्य शाश्वत आनंदमय लीला में वैकुंठ में भाग लेते हैं।
It is the original nature of every living being.
यह हर जीव का मूल स्वभाव है।
To enjoy everlasting loving affairs with the Lord and His devotees in the spiritual world.
और ये तो जीव का स्वभाव है कि भगवान की नित्य लीला में भाग लेना।
In that place of the Paravyoma, the spiritual sky, there is no birth or death.
उस स्थान में परव्योम में न तो जन्म है न मृत्यु है।
There is no anxiety.
वहां कोई चिंता नहीं है।
There is no suffering.
और कोई दुख भी नहीं है।
There is only wonderful loving exchanges.
बस जो है सुंदर प्रेम के आदान प्रदान है।
Everything that we're looking for in our life, in its perfection, is to be found there.
जो भी हम जीवन में खोज रहे हैं वो उस जगह पर पाया जा सकता है।
But when the soul, due to misusing independence, wants to enjoy separate from Krishna, he is covered by the potency of Maya.
जब जीव जो है भगवान से अलग भोग करना चाहता है तो माया द्वारा ढका जाता है।
Or the illusory energy,
जिसको माया शक्ति कहते हैं।
And comes to this material existence.
और फिर वो भौतिक अस्तित्व में आ जाता है।
Where birth after birth after birth, we are striving to be the enjoyer. To be the Lord of all we survey.
जहाँ की हर जन्म में हम स्वामी और भोक्ता बनना चाहते हैं।
But by the composition of this creation, we are frustrated at every step.
लेकिन इस भौतिक प्रकृति के स्वभाव के कारण हम हर कदम पर जो है धोखा खाते हैं।
But when by good fortune we come in the association of the Lord through His devotees, the true sadhus. We are given the proper information of what is our real nature and how to return to our original position of spiritual consciousness.
जब हम भगवान के संपर्क में आते हैं भक्तों के द्वारा तब हम जान लेते हैं कि हमारा मूल स्वभाव क्या है और कैसे हम वापस लौट सकते हैं।
Krishna is explaining in this beautiful verse that all creating beings have their source in these two natures, material nature and spiritual nature.
भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जितने भी जीव की रचना हुई है वो भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति के द्वारा है।
एंड दैट ऑल दैट इज मटेरियल एंड ऑल दैट इज स्पिरिचुअल कृष्ण सेज नो फॉर सर्टेन दैट आई एम बोथ द ओरिजिन एंड द डिसोल्यूशन।
और वो बता रहे हैं कि जो भी भौतिक चीज है या आध्यात्मिक चीज है मैं ही उसके मूल स्रोत हूं और अंत में मैं ही उसके नाश का कारण हूं।
दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअल लाइफ।
ये असली आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है।
When we develop this certainty, this faith,
जब हमारे अंदर ये निश्चय विश्वास हो जाता है।
रूप गोस्वामी explains अदोष तथा साधु संगोथा भजना क्रिया। Beginning of spiritual life was when we have some little inclination for something beyond the relativity of this world.
आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब होती है जब हमें थोड़ी रुचि होती है उस चीजों में जो कि इस दुनिया से परे है.
And Artharyami, the Lord within the heart, when he sees that we desire, he directs us to the Shastra and to the Sadhu and to the Guru.
जब अंतर्यामी परमात्मा है तो वो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमें मार्ग निर्देशन करते हैं.
And we hear.
और फिर हम श्रवण करते हैं.
We hear in that association.
उस संघ में हम श्रवण करते हैं.
And gradually a revolution of consciousness takes place within our hearts.
और फिर हमारे जीवन में एक चेतना की क्रांति हो जाती है.
We begin to develop real faith and certainty.
हम जैसे अच्छे विश्वास और निश्चय प्राप्त कर लेते हैं.
That I am the eternal soul.
कि मैं जो नित्य आत्मा हूं.
That my real home and resting place is in the loving service of the Supreme Lord.
कि मेरा सच्चा स्थान है भगवान की सेवा में है.
Human life is meant for this purpose.
मानव जीवन है वो इसी उद्देश्य से बनाया गया है.
It is not meant to waste like the lower species, just trying to make a nice, comfortable arrangement in this world.
ये उसके जैसे नहीं है जैसे नीच योनि होते हैं कि सिर्फ सुखी जीवन बिताने के लिए.
It is a hard struggle for existence.
ये एक अस्तित्व के लिए संघर्ष है.
It is a battle for survival.
और वो अस्तित्व के लिए संघर्ष है.
Just to exist in this world in these days.
सिर्फ जीवन को रखने के लिए संघर्ष है.
But in such a consciousness, what makes us different from the lower species?
लेकिन अगर यही चेतना हो तो हम जो नीचे योनी है उससे कैसे अच्छे हैं?
They have their homes, they have their families, they have their technology.
उनका भी घर होता है, उनका भी परिवार होता है, उनकी भी तकनीकियां होती हैं.
It is all based on the principles of eating, sleeping, mating, defending.
वो सब भी आहार, निद्रा, भय और मैथुन पर आधारित है.
Certainly, even the cats and the dogs and the hogs and the tigers and the lions and the insects, they protect their children. Even the birds and the trees take great care to feed their families and provide nicely.
अपने परिवार का पालन तो कुत्ते, बिल्ली, कीड़े और पेड़ ये सब भी करते हैं.
But the aim and the purpose of all these activities is simply survival.
लेकिन इन सब का उद्देश्य है बस अपना पालन करना.
Simply some temporary enjoyment of the senses.
बस इंद्रियों का थोड़ी देर के लिए सुख आनंद लेना.
Which comes and goes.
जो कि आता है और चला जाता है.
Human civilization is meant for something more than this.
मानव जीवन इससे ज्यादा ऊंची चीज के लिए बनाया गया है.
नायाम देहो देह बजाम लोके कस्तान खमान आहति विभुजाम जय तपो दिव्यम पुत्र कयेन सत्वम सुजे जिस्यम भ्राम सोक्यम त्वनंधाम. The Bhagavad explains that now that you have achieved this very rare and valuable human birth, do not waste it seeking the objects of the senses which are available for the dogs and hogs that eat stool.
भागवत में बताया गया है कि अब आपको मानव जीवन मिला है तो उसके लिए बर्बाद मत करिए जो कि कुत्ते और बिल्लियों को भी आनंद मिल जाता है.
Human life is meant for tapasya.
मानव जीवन तपस्या के लिए बनाया गया है.
Tapasya which bears the fruit of realization.
तपस्या जिसका फल साक्षात्कार में होता है.
The realization of understanding the original love for God that is within all of our hearts.
ये तपस्या इसलिए साक्षात्कार करने के लिए भगवत प्रेम जो हमारे अंदर ही है.
Through that tapasya there is real joy, there is real pleasure in life.
और इस तपस्या में जीवन का सच्चा आनंद मिल सकता है.
So we should not be fooled by the propaganda of this illusory energy which is all pervading in this age of Kali Yuga.
ये कलयुग में सब जगह फैले हुए माया के प्रचार से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए.
We must counteract the effects by regularly hearing with great attention from the lips of the sadhu the original words of Krishna as found in Bhagavad Gita.
हमें जो है इसको प्रभाव को निकालने के लिए साधु के मुख से जो है भगवत गीता के शब्दों का श्रवण करना आवश्यक है.
Krishna explains we must know for certain, we must have faith.
कृष्णा बताते हैं कि हमें निश्चित मालूम होना चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए.
Without real faith, whatever religious practices we may perform are superficial.
बिना श्रद्धा के हम जो भी धार्मिक काम करते हैं वो तो सिर्फ बाहरी हैं।
They will bring no real realization.
उसमें सच्चा साक्षात्कार नहीं प्राप्त हो सकता।
And real faith must be based on a scientific, philosophical understanding.
और सच्ची श्रद्धा जो है वो एक वैज्ञानिक दार्शनिक समझ पर आधारित होनी चाहिए।
Today in India, many young people, they are becoming very disoriented. In religious life,
आज जो विशेष करके जो मानव में जो नौजवान लोग हैं वो आध्यात्मिक जीवन की तरह ज्यादा रुचि नहीं रखते।
Their parents, sometimes they perform various pujas.
कई बार उनके माता पिता अनेक पूजाएं करते हैं।
They go to the temple to give some dakshin.
कई बार वो मंदिर में जाते हैं दक्षिणा देने के लिए।
But there's no explanation to the children. Why any of these things are being performed?
लेकिन बच्चों को समझाया नहीं जाता कि ये सब क्यों कर रहे हैं।
Who we are? What is the purpose of life? How these particular rituals are scientifically designed to promote my consciousness to higher, more blissful states?
मैं कौन हूँ, जिनका उद्देश्य क्या है, और ये रीति रिवाज किस तरह से बनाए गए हैं जिससे कि जीवन की उच्च अवस्था को हम प्राप्त कर सकें?
And therefore, all over the world. Especially here, we find the young people are becoming more and more disinterested in spiritual life.
इसीलिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में विशेष करके यहाँ पर जो नौजवान लोग हैं वो जो है आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे।
And then there becomes a great rise in immorality.
और इसलिए अनीतिवाद में बहुत ज्यादा प्रगति हो जाती है।
In attachments and attractions to the allurements. Of the various devices for sense gratification being created.
और इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन जो हैं उसमें वृद्धि हो जाती है।
And gradually the whole society is creating ugra karma, terrible, terrible karma, which is creating massive reactions, creating miseries within the world.
और धीरे धीरे समाज उग्र कर्म में लग जाता है और फिर पूरे दुनिया में जो अनेक प्रकार की विपत्तियां को पैदा कर देता है।
Therefore, Krishna explains in this beautiful verse of the Gita that we must know for certain what is the truth.
इसीलिए कृष्णा इस श्लोक में बताते हैं कि हमें निश्चित रूप से जानना चाहिए कि सत्य क्या है.
Our intelligence must be nourished with a philosophical, scientific understanding.
हमारी बुद्धि में जो है दार्शनिक और वैज्ञानिक समझ होना आवश्यक है.
Of who we are, what we are meant to do, and why.
हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए.
And Krishna explains here what is the truth.
और कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि सत्य क्या है.
That I am both the origin and dissolution of everything that exists.
जो सब कुछ है उसका मूल स्त्रोत्र और अंत मैं ही हूँ.
Krishna is the cause of all causes.
कृष्ण सब कारणों के कारण है.
बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवम अम्भवद्यते वासुदेव सार्वमिति समहात्मस दुर्लभः. A real Mahatma is one who understands this principle. After many, many births of deaths, when we come to the point of view, the point of real knowledge, we surrender to Vasudev, knowing him to be the cause and origin of everything.
एक सच्चा महात्मा ये है जो कि बहुत जन्मों के बाद ये समझ जाता है कि भगवान वासुदेव ही सब के सब कुछ हैं और फिर उनके शरण में आ जाता है.
To surrender to the Lord is actually very simple.
भगवान की शरण लेना बहुत सरल है.
It is the easiest thing.
सबसे सरल चीज यही है.
It means that whatever the Lord wants, we accept.
इसका मतलब यह है कि भगवान जो भी कहें हम स्वीकार करते हैं.
The easiest way of life is to just accept.
सबसे सरल तरीका जीवन का यह है कि स्वीकार कर लेना.
When we have to try to figure out our destiny with our own brains, that becomes very complicated and difficult.
जब हम अपने दिमाग से कोई चीज का पता लगाने का प्रयास करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है.
But we are so conditioned to such a complex, difficult way of life that the easiest thing becomes practically impossible.
लेकिन हमको ऐसी आदत पड़ गई जटिल कार्य करने की, सरल से सरल चीज है वो हमें बड़े मुश्किल दिखाई पड़ती है.
Our Guru Maharaj used to say that In the musical field, if you learn music all wrong, when someone comes to teach you the right way, it's very, very difficult.
हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर संगीत शास्त्र में अगर आपने पहले कोई चीज गलत सीखी है और कोई सही सिखाने आता है तो उसको बड़े मुश्किल होगी.
If you have a blank slate of mind, it's very easy to learn music.
अगर आपका मन जो है एक पूरे जो है खाली स्लेट के समान है तो सीखना बड़ा आसान है.
But when you have the completely wrong idea, first you have to forget. It may take years and years, lifetimes and lifetimes to forget all the rubbish you know until you can start the simple process from the beginning.
अगर आपको गलत विचार है तो कई साल लग सकते हैं वो गलत विचार को निकालने में जिससे फिर आप शुरुआत कर सकें सही ज्ञान की ओर.
So that is our situation.
और यही हमारी स्थिति है.
To know God, to love God, to surrender to God is so simple, it is so natural.
भगवान को जानना भगवान से प्रेम करना भगवान की शरण में जाना ये तो बहुत स्वाभाविक है.
But we have been educated and trained and raised through so many births in the wrong way that the easiest thing is so difficult.
लेकिन कई जन्मों से हमें ऐसे गलत सिखाया गया है कि सरल से सरल चीज है वो हमें कठिन नजर आ रही है.
Krishna explains in Gita what is truth, and every time we read, we question, is this what it really means?
भगवान कृष्ण तो साफ गीता में बता रहे हैं क्या सत्य है लेकिन हर बार हम पूछते हैं क्या ये सही है.
Krishna says, do like this.
कृष्ण कहते हैं ऐसा करो.
Chant my holy names.
मेरा नाम लो.
Associate with my devotees.
मेरे भक्तों का संग करो.
Eat nice prasad.
अच्छा प्रसाद खाओ.
Dance and chant.
नाच करो और कीर्तन करो.
Whatever you do, do it as an offering of love.
जो भी करो एक प्रेम की आहुति के रूप में करो.
But we're so conditioned by kama and envy that it's very difficult to live such a simple, blissful life.
लेकिन हम काम और ईर्ष्या द्वारा इतने बंधे हुए हैं कि ऐसे सरल आनंदमय जीवन बिताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है.
We have so many misconceptions.
हमारे अंदर कितनी गलत धारणाएं हैं.
Therefore, the most important principle of our life should be to reorient ourselves to our original nature of Krishna consciousness.
इसलिए बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होना चाहिए कि हमने फिर से अपना मुख कृष्ण भावना की ओर लगावें.
Nothing will last. Time will take everything away. Except whatever spiritual progress we make in our life.
कोई भी चीज रहने वाली नहीं है सिर्फ आध्यात्मिक प्रगति जो आपने की है वही आपके साथ रहेगी.
Bhagavad Gita is the simple, basic, fundamental truth which gives that direction to all classes of society.
भगवद गीता एक ऐसा सत्य है कि जो कि मार्गदर्शन करता है समाज के सभी भागों को.
And the conclusion of the Gita, from the beginning to the end, is bhakti, devotion to the Supreme Lord.
Gita ke shuru se ant tak Bhagwan ke prati bhakti hi samjhai gayi hai.
Bhaktyamam abhi janati yavandyashta smita. It is only by service to the Lord, it is only by remembering the Lord with love, then we could understand him as he is.
सिर्फ भगवान की सेवा करने से और प्रेम से भगवान का स्मरण करने से ही हम भगवान को सही रूप में पहचान सकते हैं.
And this bhakti is awakened when we simply learn the process of devotional service which begins with hearing the glories of the Lord and chanting the glories of the Lord.
और भक्ति की शुरुआत होती है जब हम भगवान के गुणगान सुनते हैं और उनके गुणगान गाते हैं.
Some people, they endure great hardships sitting in meditation for so many long hours every day.
कई लोग ध्यान लगाते हैं दिन में कई घंटों तक.
But the process of hearing and chanting the glories of the Lord is so pleasing and satisfying, even for a small child, and it has millions of times more powerful effect than any other form of meditation for understanding the Lord in truth.
भगवान के बारे में श्रवण करना और कीर्तन करना ये लाखों गुना ज्यादा प्रभावशाली है और ये एक बच्चा भी जो है कर सकता है.
We read in the scriptures of Prahlad.
हम शास्त्र में प्रहलाद के बारे में सुनते हैं.
simply by always remembering Krishna, by hearing and chanting his glories, he was able to overcome all the obstacles and great obstacles of life.
सिर्फ भगवान का श्रवण और कीर्तन करने से वो जीवन के बड़े बड़े जो विपत्तियां थी उनको पार कर दिए.
प्रहलाद, when he was preaching to his young friends, he told them that this is the real purpose and goal of life, and it must be done now, even in your earliest childhood days, to hear and chant the glories of the Lord.
प्रहलाद महाराज बताते थे अपने मित्रों को कि भगवान का श्रवण कीर्तन अभी से करना चाहिए इसी अवस्था से.
His friends were very confused.
उनके मित्र बहुत भ्रमित थे.
That it is better if we play. We're still so young. When we grow older, then we can engage in this bhakti.
उनके मित्र कहने लगे कि हम तो अभी बहुत छोटी अवस्था में हैं. जब हम बड़े हो जाएंगे तभी हम भक्ति करेंगे.
But Prahlad explained that there's only one time you can perfect your life in bhakti, and that is now.
उन्होंने बताया कि ये अभी समय है, जो अभी का समय है वही एक समय है जब आप अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं.
It is the power of Maya to steal our intelligence away by somehow inducing us to postpone the process of perfection to tomorrow.
ये माया की तरकीब है कि किसी तरह से हमें समझाने के लिए कि आप जो भक्ति का तरीका है वो कल कर सकते हैं.
It is the greatest illusion.
ये सबसे बड़ा भ्रम है.
Maya always gives us one more thing to complete before we surrender to Krishna.
माया हमें सिर्फ एक और चीज करने के लिए कहती है भगवान के शरण लेने से पहले.
And Prahlad Maharaj explained that when you're a little baby born from the womb, everyone is giving you so much affection.
प्रहलाद महाराज बताते हैं जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं तब सब लोग आपको बहुत प्रेम दिखाते हैं.
And you think that I am the center of the universe.
आप ये सोचते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र मैं ही हूं.
But even though there's so many pains in your body and you can't even express what it is.
आपके शरीर में इतना दर्द होता है आप बता भी नहीं सकते दूसरों को क्या चल रहा है मेरे शरीर में.
Sometimes a little baby is feeling very, very bad indigestion because of drinking too much milk.
कभी कभी बच्चे को बहुत जो है ज्यादा दूध पी लेने के कारण पेट में बदहजमी हो जाती है.
And the child is suffering severe pain of the stomach.
उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है.
And the child cannot speak to express itself.
वो बच्चा बोल नहीं सकता अपने आप को समझाने के लिए.
The only way he knows to express himself is to cry.
वो एक ही तरीके से बता सकता है और रोने लग जाता है.
And the mother and all of the other ladies see the baby crying.
और सब माता और आसपास के रिश्तेदार देखते हैं अरे बच्चा रो रहा है ये तो.
And they think, oh, the baby is crying because it's hungry for milk.
ये बच्चा जो रो रहा है क्योंकि इसको बहुत दूध चाहिए भूख लगी है.
And then they feed it more milk.
उसको और दूध पिला देते हैं.
And then the baby's spitting it and throwing it up to get it out because it's so painful.
और वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है थूक रहा है क्योंकि इतना दर्द हो रहा है उसको.
And the parents are thinking, oh, this child is so hungry for milk that his body is throwing it out, so he must force it to go in.
वो सोचते हैं कि इसे इतनी भूख लगी है कि ये बाहर निकाल रहा है इसको जबरदस्ती पिलाना चाहिए.
And this way, in the name of loving service, they simply cause their child misery.
इस तरह सेवा के नाम पर वो बच्चे को दर्द ज्यादा देते हैं.
And then the child grows up a little to be young boy, young girl, just playing so many games.
थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद फिर वो खेल खेलने लग जाता है.
And when you ask the child, take the path of bhakti.
जब बालक से कहते हैं कि चलो अभी भक्ति का मार्ग लो.
No, that's for older people. Now I'm playing games.
ये तो बूढ़े लोगों के लिए है मैं अभी खेलूंगा.
After my games are over then.
जब मेरा खेल खत्म हो जाएगा तब मैं करूंगा.
And then you get put in school.
फिर वो स्कूल में जाता है.
And why don't you take the path of bhakti after my exams?
एग्जाम खत्म हो जाए फिर भक्ति
करूंगा. Now I have too many exams. I have to study. If I think about Krishna or chant japa or go to satsang, then I'll never pass my exams after my exams.
अभी मैं यह एग्जाम पूरा कर लूं, अगर मैं सत्संग जब करूंगा तो एग्जाम पास नहीं कर पाऊंगा, इसलिए एग्जाम पूरे हो जाए फिर यह करूंगा.
So these little children working like asses, foaming at the mouth in total anxiety, studying for their exams.
ये छोटे बच्चे हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, मुंह से जो फोन आने
no
लग जाता
है. No time for the truth.
और सत्य के लिए कोई समय नहीं होता.
And then somehow or other they get through their exams.
और फिर किसी तरह से एग्जाम पास करते हैं.
And then they have to prepare for their next exams.
और फिर उसके बाद हमें दूसरे परीक्षा की तैयारी करनी हो.
And as the grades get higher, the exams become more important.
और जैसे वो ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो एग्जाम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं.
So gradually, year after year after year after year, they think, after I get out of all my studies, then I will surrender to Krishna.
वो सोचते हैं कि अभी मेरी पूरी पढ़ाई पूरी हो जाए फिर मैं कृष्ण की शरण में आ जाऊंगा.
But then after studies, then all pressures from all directions. Now you have to get a job, you have to settle yourself in some occupation.
फिर उसके ऊपर और दबाव आ जाता है कि अभी आपको नौकरी करनी चाहिए और अपने आप को जीवन में स्थापित करना चाहिए.
After so many years of studying in school and getting big, big, big degrees, you have to go begging like a dog, door to door, asking, give me some scraps, give me a job.
और इतने बड़े बड़े डिग्री प्राप्त करने के बाद कुत्ते की तरह भिक्षा मांगनी पड़ती है कि मेरे को नौकरी मिल जाए.
After I get my job, then I will take bhakti.
जब मेरे को नौकरी मिल जाए फिर बाद में भक्ति कर लूंगा.
But then you get your job.
फिर नौकरी मिल जाती है.
And there's so many expectations.
और फिर कई आशाएं की जाती हैं.
And soon you get married.
और बहुत जल्दी विवाह हो जाता है.
And then you have children.
और फिर बच्चे हो जाते हैं.
And then you get a house.
फिर आप घर लेते हैं.
And then there's so many bills.
और फिर बहुत सारे बिल भरने पड़ते
हैं. So many debts.
और बहुत ऋण चुकाने पड़ते
हैं. So much social pressure.
और बहुत सामाजिक प्रेशर आ जाता है.
You have the right type of clothes and the right type of food and the right type of cars to drive and everything else.
अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, अच्छे प्रकार की कार वगैरह.
And in order to accommodate the necessities of life, what modern society calls the necessities of life, you have to work and work and work. When I'm established, then I will take bhakti.
और फिर आप सोचते हैं कि जब मैं स्थित हो जाऊंगा ठीक से तब मैं भक्ति कर लूंगा.
In this way, working in anything, when my children grow up, when they get through college, when they pass all their exams, then I will take to spiritual life.
और फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो कॉलेज पास कर लेंगे तब मैं आध्यात्मिक जीवन में रुचि लूंगा.
Until then, I will perform little puja, do a little ritual, maybe go to the temple on Sunday for a few minutes, and people will think I'm pious, and I will do a little bit of, give a little charity. That will hold me off until I can surrender to God at a later date.
और मैं थोड़ी पूजा रीति रिवाज कर लूंगा, थोड़ी मिनटों के लिए रविवार को मंदिर चला जाऊंगा, लोग सोचेंगे मैं आध्यात्मिक हूं, और बाद में फिर शरण की सोचूंगा.
And then Prahlad Maharaj explains, first 25 years wasted as a child and in studies, the next 25 years wasted just trying to develop your family life.
पहले 25 साल तो है बचपन में बीत जाते हैं, अगले 25 साल परिवार जीवन में बीत जाते हैं.
And then when your children grow up, you're old.
और जब बच्चे बड़े हो जाते तब आप बूढ़े हो गए होते हैं.
You cannot see properly anymore.
ठीक से देख भी नहीं पाते.
Your brain cannot remember things hardly anymore.
आपका दिमाग कोई चीज को याद नहीं कर पाता.
Your body is aching.
आपके शरीर में बड़ा दर्द होता है.
This is the part of the life you save for God.
यही जो है जीवन की शक्ति है जो आप भगवान के लिए रख रहे हैं.
Is this love?
क्या ये प्रेम है?
Love means you give the best, not the worst.
प्रेम का मतलब है सर्वोत्तम देना, सबसे खराब नहीं देना.
If you love somebody and you want to give them some nice meal, it's not that you eat everything nice and sweet and give them the things that are just bitter and that you don't want. That is not love.
अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये नहीं कि मीठे और स्वादिष्ट चीज खुद खा लें और जो कड़वी चीजें हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती वो आप उसको दे दें, ये तो प्रेम नहीं है.
All the years of our life, when we are young and strong and energetic, we simply surrender to Maya.
जो सब अच्छे जीवन के साल हैं जब हमारे अंदर शक्ति है वो हमने माया के समर्पण कर दिया.
For our own selfish purposes of preservation.
हम अपने बस अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए.
And the last part of life, then we say, oh God,
That I will give to you.
और आखिरी भाग जो होता है हम कहते हैं हे भगवान ये आपको अर्पण.
But by that time it is said you cannot bend old bamboo, it just breaks.
ऐसा बताया जाता है कि पुराने बांबू को तो है मोड़ा नहीं जा सकता वो टूट जाता है.
We're so fixed in our ways, we're so attached to our conceptions, and it's very difficult to take to spiritual life.
हम इतने स्थिर हो जाते हैं अपने विचारों में कि आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है.
In this way Prahlad explains we come to the final chapter of our life and we die.
इस तरह प्रहलाद कहते हैं कि हम जीवन के अंतिम अध्याय में आते हैं और मर जाते हैं.
And at the time of death we look back and we regret our whole life.
और हम फिर अपने जीवन को देखते हैं और हमको बहुत बुरा लगता है पूरे जीवन के बारे में.
Because we can take nothing with us.
क्योंकि कुछ तो साथ ले नहीं जा सकते.
कमल दल जल जीवन तल मला बजहुन हरि पदानी तीरे. All that we have worked so hard for throughout our life, it is all like so many little drops of water on a lotus leaf. It is here and then it goes away.
जो सारी मेहनत की वो ऐसे है कि कमल के दल के ऊपर थोड़े जल की बूंदे हैं, थोड़ी देर रहती है फिर चली जाती है.
So in this great land of Bharatvarsha, India, we have these great Vedic scriptures summarized in Bhagavad Gita and such a great heritage of acharyas who have given us this most essential and important message.
हमारे पास ये जो है भारत संस्कृति का सार भगवत गीता में है जो कि आचार्य द्वारा दिया गया है.
They repeat the words of Prahlad that now whatever stage you're in at this particular moment is the only and best time to take to the path of bhakti.
वो प्रहलाद महाराज के संदेश को दोहराते हैं कि अभी जो समय है यही सर्वोत्तम तरीका है भक्ति को स्वीकार करने का.
To take it serious and to make it a priority.
उसको गंभीरता से स्वीकार करना और जीवन में प्रथम स्थान देना.
Whether you are a child, whether you are a student, whether you are family, or whether you are in old age, this is the priority, this is the purpose of life. It cannot wait. Waiting means it will never come.
आप जो है चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो आप इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि इंतजार करने का मतलब है कि वो कभी होगा ही नहीं.
Maya does not come and say, I will take your life.
माया यह आकर नहीं कहती कि मैं आपका जीवन लूंगी.
If she spoke like that, she would be too obvious.
अगर वो ऐसा बोलेगी सबको मालूम पड़ जाएगा कि माया आई है.
She comes and says, I will just take this moment. You can have the rest.
माया बोलती है बस एक क्षण मेरे को दे दो बाकी खुद रख लो.
But after that moment, she just asks for one more moment.
और एक क्षण के बाद एक और क्षण मांगती.
And after that, she asks for one more moment.
और फिर एक और क्षण.
And moment after moment after moment.
और एक एक क्षण करके.
And then death comes and we realize the moments are gone.
और जब मृत्यु आती है तो सारे क्षण खत्म हो जाते.
Maya has taken my whole life.
माया ने मेरा पूरा जीवन ले लिया.
Imperceptibly.
पता ही नहीं चलता उसका.
So this is the warning that Krishna is giving us.
ये चेतावनी भगवान कृष्ण दे रहे हैं.
Now is the time.
यह भी समय है.
And Krishna has so mercifully given such a wonderful and practical formula by which we can perfect our lives.
Krishna ने इतना सुंदर हमको फॉर्मूला दिया है जिससे हम जीवन को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं.
We see tonight there are children, there are students, people of all ages.
आज हम देखते हैं कुछ बच्चे हैं कुछ विद्यार्थी हैं सब उम्र के व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हैं.
We see there are three, four generations.
तीन चार पीढ़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं.
And they are all together.
और ये सब एक साथ बैठे हैं.
To take prasad together is a wonderful unifying activity.
एक साथ प्रसाद लेना ये सबको एकत्रीकरण करने का तरीका है.
To hear the topics of Krishna Katha together is a wonderful, wonderful activity that we can all benefit from.
Krishna Katha एक साथ सुनना ये बहुत अच्छी कार्य है जिससे सबको लाभ मिल सकता है.
But most of all in this age of Kali, that spiritual process which unifies the hearts of all living beings like no other way is the process of Sankirtan.
और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है इस युग के लिए संकीर्तन.
Sankirtan is the remedy for all the problems of the world.
सारी दुनिया की समस्याओं के लिए हल एक ही है संकीर्तन.
In a few moments, you will see.
अभी थोड़े क्षणों में आप देखेंगे.
People who have nothing to do with each other.
ऐसे ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है.
Who are universes away from each other in their interests of life.
अपने जीवन के विचारों में सब अलग अलग विचारों वाले हैं.
How they can come together so lovingly in the chanting of the holy names.
कैसे वो प्रेम से एक साथ भगवान के नाम कीर्तन करते हैं.
Today in families in the West, families are not even families.
आज पाश्चात्य देश में तो परिवार को परिवार भी नहीं बोला जा सकता.
Everyone has their own way of thinking.
हर एक अपना अपना विचार करने का ढंग है.
There's practically no communication.
आपस में कुछ जो है विचारों का आदान प्रदान नहीं होता.
As far as the grandparents, they usually just live somewhere far away.
और जहां तक दादा दादी का सवाल है वो तो कहीं दूर रहते हैं.
And on some special day, people go to visit them.
और कोई विशेष दिन सिर्फ मिलने के लिए चले जाते हैं.
And nobody likes to visit them.
और कोई उनसे मिलना ही नहीं चाहता.
Because there's nothing to do with them.
उनसे कुछ करना ही नहीं चाहते.
What they talk about, nobody else has any interest in.
किसी को रुचि ही नहीं होती उन चीजों में जिससे बात करते हैं.
And as far as the parents and the children, they may live in a house together for a while.
और माता पिता बच्चे थोड़े दिनों के लिए साथ में रहते हैं.
But usually everyone eats at a different time.
और सबका खाने का ढंग खाने का समय अलग अलग होता है.
Each has their own television in their own room because no one wants to watch the same show.
अलग अलग कमरे में अपना अपना टीवी होता है क्योंकि वो एक शो नहीं देखना चाहते.
There's practically no communication.
और कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं होता.
And as soon as you graduate high school, you get out.
और जैसे ही हाई स्कूल पास होते हैं तो बस बाहर निकल जाते हैं.
No question of joint family.
और एक साथ मिलकर रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता.
Because people cannot tolerate each other.
क्योंकि एक दूसरे को सहन ही नहीं कर पाते.
And even husband and wife, a little disagreement and there's divorce.
और पति पत्नी में थोड़ा कुछ विचारों का मतभेद हुआ तो बस तलाक.
This is the civilization that India is so madly trying to imitate.
और इसी सभ्यता को आज भारत जो है पालन करने का प्रयास कर रहा है.
The blind leading the blind.
एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधों को नेतृत्व कर रहा है.
But even here, the children, what real activities do they perform with their parents and with their grandparents that is actually joyful and wonderful?
लेकिन यहां पर भी कैसे बच्चे जो है बहुत अद्भुत कार्य करते हैं.
The Sankirtan of the holy name.
हरि नाम का संकीर्तन.
We see the children are dancing and chanting blissfully, remembering Krishna.
हम देखते हैं छोटे बच्चे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं.
Their brothers and sisters who usually they are fighting with are dancing with them.
और भाई बहन जो आपस में झगड़ते रहते हैं वो भी एक साथ नाच रहे हैं.
Their mothers, their fathers, their uncles, their aunties, they're all dancing with them.
माता पिता और चाचा चाची ये सब भी नृत्य कर रहे हैं.
Their grandfathers and grandmothers, great grandfathers, grandmothers are all dancing.
और दादा दादी और उनके परदादा और परदादी वो भी नृत्य कर रहे हैं.
They're all taking prasad together.
एक साथ प्रसाद ले रहे हैं.
It's beautiful, it's wonderful, it's natural.
ये बहुत सुंदर और स्वाभाविक और अद्भुत है.
It's real family life.
ये
based on truth.
ये सत्य पर आधारित सच्चा पारिवारिक जीवन है.
And not only that, but people of all castes, of all communities, they forget all these mayic designations.
और सब जाति के सब लोग सब एकत्र हो जाते हैं और इन सब भेद को भूल जाते हैं.
People from the east, people from the west, people from Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Kashmir, anywhere. Whether they are Christians or Jews or Muslims or Hindus, when they come to the kirtan of the holy name, all these designations are forgotten.
चाहे कहीं के लोग हो पूर्व के पश्चिम के महाराष्ट्र से गुजरात से कर्नाटक से कश्मीर से जब वो एक साथ कीर्तन में आते हैं सब भेदभाव भूल जाते हैं.
All these social barriers come crashing down.
और सामाजिक दीवारें हैं वो टूट जाती हैं.
Recently we have seen.
हमने देखा है.
One of the wealthiest men in all of India.
भारत के सबसे धनशाली व्यक्ति में से एक.
वेरी प्रेस्टीजियस पर्सन नोन बाय एवरीवन.
सबके द्वारा जाने वाला.
ड्यूरिंग कीर्तन ही बिगन टू डांस लविंगली विद द ड्राइवर ऑफ हिज कार.
वो प्रेम में या कीर्तन में अपने कार के ड्राइवर के साथ डांस करने लग गया.
His driver, who's usually, take me here, take me there, yes master, yes master.
अधिकतर समय तो ड्राइवर को बोलते हैं इधर ले जाओ उधर ले जाओ और वो हाथ जोड़ के कहते हैं अच्छा स्वामी जो आप बोलेंगे.
They forgot who's the driver and who's the master.
वो ये भूल गए कि ड्राइवर कौन है और कौन स्वामी है.
They were laughing together, dancing together, embracing one another.
वो हंसने लग गए एक दूसरे को गले लगाने लग गए.
Tears in their eyes.
उनकी आंखों में आंसू आने लगे.
This is the power of the holy name.
ये भगवान के पवित्र नाम की शक्ति है.
Rio!
Rio!
This is real human life.
ये मानव जीवन.
So this is the opportunity which the Lord has given us to crash through all the barriers which create so much lack of communication.
ये एक तरीका है जिसके द्वारा सब जो दीवारें हैं उनको तोड़ देना.
It is establish amongst various human beings of various categories.
ये एक तरीका है जिससे अलग अलग प्रकार के मानव अलग अलग श्रेणियों के बीच में एकता पैदा की जा सकती है.
दिस प्रोसेस ऑफ कीर्तन एलिवेट्स एवरीवन्स कॉन्शियसनेस.
ये कीर्तन के तरीके से सबकी चेतना ऊपर उठ जाती है.
इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली.
एक व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में भी.
देयरफॉर लॉर्ड चैतन्य प्रेड चेतोदारपन मार्जनम वव महादवाग्नि निर्वापनम श्रेय कैराव चंद्र खावतरणम विझावधु जीवनम आनंदम बुरी वारदनम प्रतिपदम भुनामृतास्वादनम सार्वात्मा स्नपरम परम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तनम. That this chanting of Krishna's holy name is the prime benediction for all humanity.
ये भगवान का नाम संकीर्तन जो है सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है.
Because it cleanses the mirror of the heart.
क्योंकि हृदय के दर्पण को साफ करता है.
It washes away all misconceptions, all illusions.
सारी गलत धारणाओं और सारे माया को दूर कर देता है.
All our envy and lust and pride and greed is washed away by the holy name.
और ईर्ष्या लोभ और मान ये सब जो है भगवान के नाम से साफ हो जाता है.
It establishes realization of our true identity.
हमारी सच्ची पहचान को वो स्थापित करता है.
As the eternal parts of God.
भगवान के नित्य अंश के रूप में.
Eternal, full of knowledge and full of bliss.
जो कि सत चित और आनंद है.
And through the chanting of the holy names, our original love for Krishna is awakened in our hearts. Our original love for Krishna in everything.
और इसके द्वारा हमारा जो मूल प्रेम है कृष्ण के प्रति वो जागृत हो जाता है.
And then we can taste the real sweet fruit of blissful life.
और फिर हम जो है आध्यात्मिक जीवन का सच्चा फल का आस्वादन कर सकते हैं.
And in everything we do, in everything we say, we can express that love.
और हम जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं उसमें वो प्रेम प्रकट कर सकते हैं.
Whether we are housewives or students, or whether we are professionals in the fields of architecture or medicine, or business or law, whatever we may be doing, whether we're farmers or sweepers of the street, we can perform our occupation as an expression of divine love.
हम चाहे कुछ हो किसान हो या हम डॉक्टर हो या कोई भी कार्य कर रहे हो या घर के काम कर रहे हो हम अपना प्रेम को जो है इस तरह से प्रकट कर सकते हैं.
It is not that we should give up our occupations or our present status in society, but we should perform our work as Gita teaches. Not just with detachment from the fruits, but with attachment to the reservoir of all pleasure, or Krishna.
और जैसे गीता में बताया गया ये नहीं कि सिर्फ अनासक्ति रखनी है बल्कि कृष्ण से जो है आसक्ति रखनी है जो कि आनंद के भंडार है.
यत् करोषि रचनाशि यत् जोहोषि ददाशि यत् तपस्वि तकोषि तत् कुरुष्व मदारपणम्. Krishna says, whatever you do, you just do it as an offering, as an expression of your love for me.
Krishna Bhagwan bolte hain ki aap jo kuch bhi karo wo mere ko arpan karo prem ke se.
This state of consciousness is the product of sincerely hearing the glories of the Lord and chanting his holy names.
Aur ye chetana tab aati hai jab hum Bhagwan ke gun ko shravan karte hain aur unka naam kirtan karte hain.
Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna.
सब बोलिए Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Thank you very much.
बहुत धन्यवाद.
Does anyone have any questions?
किसी को कोई प्रश्न पूछना है क्या?
So at this time we would like to invite you all to participate in this beautiful process of chanting the holy names of Shri Krishna.
अभी हम आप सबको निमंत्रण करेंगे कि आप सब लोग ये नाम संकीर्तन में भाग लेंगे.
The Supreme Personality of Godhead personally appears in this world in his divine form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to teach us the sublime process of the Yuga Dharma. Congregational chanting of the holy names.
जो परम भगवान हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस दुनिया में प्रकट होते हैं हमको ये नाम संकीर्तन सिखलाने के लिए.
We would like to teach you the process in which Lord Chaitanya has given us.
हम आपको वो तरीका सिखलाएंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है.
And please very carefully on this evening. Take part exactly as the Lord has instructed us.
और कृपया आज शाम को जैसे भगवान ने सिखाया है उसी तरह से आप भी भाग लीजिए.
And taste the true sweetness and beauty of this human form of life.
और इस मानव जीवन के सच्चे आनंद का आस्वादन करिएगा.
प्रभु जी will now teach you Lord Chaitanya Mahaprabhu's method for purifying our hearts.
तो अभी हम आपको श्री चैतन्य महाप्रभु का तरीका जो सिखाएंगे हृदय का शुद्धिकरण.